आगे देखिए, अब एक और किस्म आने लगी है, उधार, कर्ज। आयते दैन कुरान की तवील तरीन आयत है, रुकू नंबर 7, 282-283। टॉपिक लिखिए आपस के मामलात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियादे मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया, बस इसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह तला से डरे जो इसका रब है, बस इसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए अपने अल्लाह तला से डरे जो इसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो। अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करो, ताकि एक ही भूल चूक को दूसरी याद दिलाए, और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है ख्वाह छोटा हो या बड़ा लिखने में काहली ना करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और शको शुबे से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर इसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नफरमानी है। अल्लाह तआला से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह तआला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्ज़े में रख लो, यानी प्लजिंग। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई हो वो इसे अदा करे, और अल्लाह तआला से डरता रहे जो इसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, और जो इसे छुपा लेगा वो गुनाहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। आयत 282, आयत दैन कुरान पाक की तवील तरीन आयत लफ्ज़ों के एतबार से। और मैं पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी, आपने शायद नोट किया हो, क्यों? इतनी डिटेल से तो पूरे कुरान में नमाज का भी तरीका नहीं है, रोज़े के मसाइल नहीं है, हज का तरीका नहीं, जितना कर्ज का लेन देन। यानी सदका दो, सदका नहीं लेना चाहते, सूद लेना देना नहीं, तो बीच का रास्ता है कि कर्ज ले लो। कोई कर्ज नहीं आपको देता तो रहन गिरवी प्लच करके दे लो। ये सब कुछ हमने पढ़ा, यानी कर्ज खर्च की तीसरी किस्म है। किसी मियादे मायन के लिए जब कर्ज का मामला हो तो दो शरायत है, नंबर एक उसको लिखा जाए गवाहों की सूरत में, और मुद्दत का तयन हो। बहन भाइयों में भी कर्ज का लेन देन हो तो लिख लेना है, अदरवाइज अजर नहीं मिलेगा। और लिखवाने का मामला कौन करे, किसने लिखा, इतनी डिटेल्स। यहाँ से पता चलता है इस्लाम दूसरों के माल के बारे में कितना हसास है। कोई किसी का माल बातिल तरीके से ना खा जाए, क्या रवैये इसमें दिखे रज़ा इलाही वाले। नंबर एक, कर्ज के मामले को लिख लेना चाहिए, लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, इंसाफ के साथ कागजी कार्रवाई करनी चाहिए, अमानतों को अदा करना चाहिए, सच्ची गवाही देनी है, और मामलात में लिखने में पढ़ने में कमी बेशी नहीं करनी चाहिए। और आपके मेरे लिए तो यह है कि अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह वक्त में बरकत दे और हम इन सारे मसाइल को तफसील से सुने और पढ़ें, ताकि कल क़यामत के दिन हम दूसरों के माल को नाहक खाकर अल्लाह के यहाँ भी और उनकी नज़रों में मुजरिम ना बने हों। इसके बाद अब आखिरी आयते हैं, सूरत पूरी हो रही है। टॉपिक लिखिए समेना व अतौना। सहाबा का भी यही स्लोगन था, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हम जो जो हुक्म सुन रहे हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आयत 284, आप इसको महसूस कीजिएगा, आयतुल कुर्सी के बाद ये खूबसूरत आयतें आ रही हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला की मलकियत है, तुम्हारे दिलों में जो कुछ है तुम इसे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला इसका हिसाब तुमसे लेगा, फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आमन और रसूल, रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो इसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतारी गई या उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए, ये सब अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से किसी में हम कोई तफरीक नहीं करते, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और तेरी ही तरफ हमें लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, रब्बना ला तुआखिसना इन नसीना, ऐ हमारे रब अगर हम भूल गए या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। गज़वे बदर के कुर्ब व जवार में ये आयतें नाजिल होती हैं। वंसुरना लिल कौमिल काफिरीन, क्या पता चला कि अल्लाह से बख्शिश की दुआ करते रहना चाहिए। एक खुश नसीब थे अबू आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआए मग़फ़रत की, जिनके घुटने में तीर लगा। अबू मूसा अल अशरी सुनाते हैं कि जब अबू आमिर के घुटने में तीर लगा तो मैं इनके पास पहुंचा। उन्होंने फरमाया कि इस तीर को खींच कर निकाल लो। मैंने खींच लिया तो इससे खून बहने लगा। फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपको इस हादसे की इत्तला दी, तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह उबैद अबू आमिर की मग़फ़रत फरमा। क्या पता चला कि वो सहाबा किराम जो नबी सल्लम के कुर्ब व जवार में होते थे, आपके बताए हुए मिशन पे निकलते थे, फिर उनको अगर वहाँ कोई तकलीफ़ भी आ जाती थी तो उनको भी नबी सल्लम से दुआएं मिलती थी। तो दुआएं लेने वाले काम करना है, ये हमारी ज़िंदगी का शुआर होना चाहिए। असल कमाई जो है ना वो दुआएं हैं, और जो अल्लाह के रास्ते में काम करते हैं उनको तो दिन रात में दुआएं मिलती हैं। फिर आप देखिए कि जो आखिरी दुआएं थे इनको अर्श का ख़जाना भी कहते हैं। पूरा कुरान ज़मीन पर नाजिल हुआ और ये दुआएं थे आसमान पे मेराज के मौके पे नाजिल हुई थी। फिर इसी तरह सहाबा कराम रसूलों में फ़र्क नहीं करते थे, सबको मानते थे और वो कामिल इताअत करते थे, यानी समेना व अताना। इन आयतों में सहाबा कराम की घबराहट भी दूर की गई। वो कहते थे हम अपनी इसी कोशिश करके तो अल्लाह से डरते हैं, लेकिन हम हक तो अदा नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने आपको तसल्ली दी। सहाबा कराम नेकियाँ करके भी क्यों डरते थे? इसलिए कि उनका अकीदा आखरत बड़ा वाज़े था, और ख़ुद को सबसे छोटा और कमज़ोर समझते थे, और अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते थे, और हर वक्त दुआओं में मसरूफ़ रहते थे। आपने मैंने इस रुकू में अपने अमल के लिए क्या लिया कि अल्लाह से अपने हिसाब की सख्ती से बचने की दुआएं करते रहिए। हिसाब का डर रखिए। एक पानी का गिलास भी जो एक्स्ट्रा ज़ाया हो गया ना आपकी वजह से, कल हिसाब देना पड़ेगा। आप होटल में जो चीज़ ऑर्डर कर दें ना, फिर उसका पे करना पड़ता है, चाहे पिएं खाएं या फेंकाएं या साथ ले आएं। अल्लाह ने भी आपको मुझको खाने पीने की इजाज़त दी है, ज़ाया करने की कतई इजाज़त नहीं है, चाहे आपके पास करोड़ों हैं या लाखों डॉलर्स हैं। दूसरी बात है, अगर कभी कोई आजमाइश आ जाए तो हौसला रखिए। रसूलों के दरमियान फ़र्क नहीं करना, और मोमिनीन को यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेगा। सच्चा मोमिन अल्लाह से अपनी बख्शिश की तलब करता रहता है, और जो बात सुनता है उसको मानकर उस पर अमल करता है। यहाँ पे सूरत बकरा पूरी होती है, एक खूबसूरत तवील तरीन सूरत हमने कुरान की पूरी की। दुआ करते हैं अपने लिए कि अल्लाह इस सूरत में जितने डूस यानी हुक्म थे उस पर अमल की तौफीक दे, जितनी बातों से रोका गया उससे रुकने की तौफीक दे। इसमें जितनी दफ़ा तूने याल्लज़ीना मनु पुकारा उसके ऊपर अमल करते हुए मुझे भी ईमान वाला बना दे, और या अल्लाह मुझे तेरे रास्ते में बेहिसाब भाग दौड़ करने वाला, बेहिसाब नेकियां करने वाला और बेहिसाब वक्त और माल लगाने वाला बना दे, और या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। हम जितने भी इस वक्त तुझे राज़ी करने की कोशिशों में हैं तो अल्लाह हमसे राज़ी हो। अगली सूरत सूरत आल इमरान है, दूसरी सूरत है सूरह बकरा के बाद जो तिवालत के अतबार से। इस बारे में हम इसकी शुरू की 91 आयात पढ़ेंगे, 1 से शुरू करके। आले इमरान हज़रत ईसा की फैमिली यानी आपके नाना के नाम पे ये सूरत है। सूरत फातिहा में हमने जो दुआ की थी उसके जवाब में सूरत बकरा में मग़दूबिन अलैहिम, और अब यहाँ दुआलीन की बात होगी। आपको बहुत सारी मुमासलत मिलेंगी सूरत बकरा के शुरू और आखिर में, और सूरत आले इमरान के, इनको आप बाद में ख़ुद नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पहला रुकू नौ आयतों पे है, टॉपिक है हिदायत पर इस्तकामत। अलिफ लाम मीम, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है और सब का निगेबान है, जिसने आप पर हक़ के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, इसी ने तौरात और इंजील को उतारा था इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी इसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, अल्लाह ताला गालिब है बदला लेने वाला। यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं, वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब है और हिकमत वाला है। वही अल्लाह है जिसने आप पर किताब उतारी जिसमें वाज़े मजबूत आयात हैं जो असल किताब हैं, और बाज़ मुतशाबे आयात हैं यानी डाउटफुल या मिलती जुलती। बस जिनके दिलों में टेढ़पन यानी कजी है वो तो शुबे वाली आयतों के पीछे लग जाते हैं फितने की तलब में और इनकी मुराद की जस्तजू के लिए, हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान लाए हैं, ये हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, इसको तड़प के मांगिएगा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न कर। रोज़े की हालत में अपने लिए दुआ भी कीजिए, आमीन भी कहिए, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। इन्नका जामिउन नास, ए हमारे रब तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। इन आयात में नसारा के कुछ अकायद पे रद्दो कदा है। हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते थे, अल्लाह ने ऐसी सिफात बयान की जो हज़रत ईसा में नहीं थी, क्या पता चला बग़ैर इल्म के अमल करने वाले ऐसी गलती ही करते हैं जैसी नसारा ने की। और इन आयात में आयत 7 में बर्रा से खून फ़ेल इल्म की बात बनी, इल्म में रसूख हासिल करना। आप भी अपने लिए नियत कीजिए, इस वक्त हम बहुत जल्दी का सफ़र तय कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम दोबारा शुरू से कुरान शुरू करेंगे फातिहा से, तो आपने फिर गहराई से इल्म लेना ताकि इल्म में रसूख हासिल हो। फिर इसी तरह से वमा यज़्ज़क्कर इल्ला उलुल अलबाब की बात हमने देखी कि नसीहत अक्ल वाले ही कबूल करते हैं, और सहाबा इकराम हर वक्त नसीहत कबूल करने के लिए तैयार रहते थे। हमने दुआ सीखी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो इस दुआ को मांगते हुए हमने अपनी हर गलत आदत को चेक करना है। देखिए रमज़ान में खुद से किए हुए वादे पूरे करने आसान होते हैं। यहाँ बैठकर अपनी कोई बुरी आदत सोचिए, वो ज़ुबान की कोई ज़्यादती हो सकती है, बोलना, गीबत, झूठ, बुराई, वो आँखों की, दिल की, या कोई भी, बोलिए मैंने इंशाल्लाह अपनी वो खामी दूर करनी है, और अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे और आपकी भी मदद करे। रज़ा इलाही पाने के जो रवैये इस रुकू में थे, नंबर एक इल्म में पुख्तगी हासिल करनी है, फितनों से दूर रहना है, दीन की सलामती और इस्तेकामत के लिए दुआएं करनी है, और इल्म को अमानत समझकर इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद रुकू नंबर 10 है, पसंदीदा दीन कौन सा। आयत नंबर 10 से शुरू होकर आयत नंबर 20 पे पूरा होगा। फरमाया काफिरों को इनके माल और इनकी औलादें अल्लाह के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी, वो तो जहन्नुम का ईंधन है, जैसा आले फिरौन का हाल हुआ और इनका जो इनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। कुफार से कह दीजिए कि तुम अन करीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो आपस में गुथ गई थी, गज़वे बदर की तरफ इशारा। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ी और दूसरा गिरोह कुफार का था, वो इन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देखते थे, और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है। यकीनन इसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ سوچئے، اس وقت بھی آپ اور میں اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ کون سے بندے جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان سب کاموں کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ کیا پتہ چلا کہ علم والوں کی بڑی شان ہے۔ تو ان آیات میں اللہ کی رضا کو پانے والے جو کام ملے، نمبر ایک، اللہ کی راہ میں جہاد یعنی جد و جہد، رات کی آخری گھڑیوں میں دعائیں، سحری بناتے ہوئے دعائیں کیا کریں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے۔ پھر تقوی اور فرما برداری کی روش اختیار کرنا، استغفار کرنی ہے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی محبت دل سے کم کرنی ہے، اور صبر اور سچائی پہ قائم رہنا ہے۔ اور اگلا رکوع، رکوع نمبر 11، آیت 21 سے 30 تک، اطاعت اور تابے داری اس کا ٹاپک ہے۔ یہاں سے لے کے پارے کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے اسلام کی بہت بات ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب جلد لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع دار یعنی فالورز نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا۔ اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں یعنی روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ آپ سورۃ آل عمران میں بہت سی دعائیں بھی پائیں گے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو دیکھنا، بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہونا، اس کا بھی بہت تذکرہ آپ کو ملے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو کہ ضائع ہو جائے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک کتاب کا حصہ دیا گیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ، بڑی پیاری دعا ہے، اس پہ آمین کہیے گا۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। कह दीजिए कि ख्वाह तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, ख्वाह जाहिर करो, अल्लाह ताला सब जानता है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब उसे मालूम है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। फिर नोट किया आपने, यानी अल्लाह की नज़र तुम्हारे दिलों पे है। ये था वो नुक्ता जिसको सहाबा कराम समझ गए थे। क़यामत का मंज़र है जिस दिन हर नफ्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा। ज़रा तसव्वुर की निगाह से अपने अमल नामे में झांकिए, क्या लिख रही हूँ अपने अमल नामे में, क्या लिखवा रही हूँ यहाँ। और होगा क्या, आरजू करेगा कि काश इसके और इसकी बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है। दो दफ़ा ये जुमला है, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा। कोई छोटा बड़ा भी आपको डराए तो बात बने, और कहाँ अल्लाह डरा रहा है आपको अपनी ज़ात से, फिर भी हम नहीं डरेंगे। हज़रत उमर ने तो अपने गाल ज़मीन पे लगा दिए थे, हज़रत उस्मान में खशियत इलाही कसरत से थी। अल्लाह हमें भी अता कर दे, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। ऐसा लगता है आप डरे, अल्लाह ने आपको खुशखबरी सुना दी। क्या रवैये मिले इस रुकू में से रज़ा इलाही को पाने के? नंबर एक, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही दीन है, तो हमने भी इस्लाम को दीन बनाना है। काफिरों को दिली दोस्त नहीं बनाना, अदल और इंसाफ से काम करना है, और किताब के फ़ैसलों से पहलू तही नहीं करनी, यानी ज़िंदगी के फ़ैसले इस किताब से लेने हैं। रुकू नंबर 12, 31 से 41 है, दीन इलाही के लिए ख़ुद को वक्फ करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमसे इसको कबूल कर ले। कह दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुम से मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर ले तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब फरमाया। यहाँ अब आपको सूरत का नाम समझ आएगा क्यों आले इमरान है। फरमाया ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। इसको नज़रे तबर्रो कहते हैं। आज की माँ को ये नज़रें माननी पड़ेंगी कि अपने पेट के बच्चों को अल्लाह की नज़र कीजिए। नौ माँ अपने पेट में रख कर भी इसको अपना नहीं समझूंगी। हज़रत मरियम की माँ कितनी अक्लमंद थी, आज कब्र में है, बच्ची भी कब्र में है, लेकिन ये आयतें पढ़कर मैं और आप नियतें कर रहे हैं कि हमने भी अपनी नस्लों को दुनिया के सपुर्द नहीं करना, अपने बच्चों को दीन के लिए डिवोट कीजिए। आप नियत तो अच्छी की, लेकिन पैदा बेटे की जगह बेटी हो गई, और उस दौर में बेटियों को कबूल नहीं करते थे दीन के नाम पर। क्या कहा, जब बच्ची को जाना तो कहने लगी, ऐ परवरदिगार मुझे तो बेटी पैदा हुई, अल्लाह को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई, और लड़का लड़की जैसा नहीं, मैंने इसका नाम मरियम रखा, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूत से तेरी पनाह में देती हूँ। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसे बेहतरीन परवरिश दी, और इसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया केयर टेकर। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते, इनके पास रोज़ी रखी हुई पाते, वो पूछते हैं, मरियम ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती हैं कि हाज़ा मिन इंदिल्लाह। ये जवाब दिया करें, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी अता करे। इसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, हुनालिका हेयर एंड नाउ, फौरन क्या कहा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला। बस फरिश्तों ने इन्हें आवाज़ दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी दी है, जो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार साबित नफ्स और नबी है नेक लोगों में से। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? तो भाई मांगा क्यों, है ना इंसान की कमज़ोरी, पहले मांगता फिर कहता होगा कैसे, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे वो करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, निशानी यह है कि 3 दिन तक तो लोगों से बात ना कर सकेगा, सिर्फ़ इशारे से समझाएगा। तो अपने रब का जिक्र कसरत से कर और सुबह शाम इसी की तस्बीह करता रह। कैसी प्यारी स्टोरी है इन लोगों की। हम सूरत मरियम के शुरू में पढ़ेंगे तो वहाँ इस पर कुछ बात करेंगे। बस यहाँ तो ये दुआ कर लें कि अल्लाह अपनी रहमतों से मायूस ना करे। इस पूरे रुकू में जो बात मिली, नंबर एक अल्लाह से मोहब्बत और रसूल की इताअत करनी है, औलादों को दीन के लिए वक्फ करें। ये बड़ा रिच टॉपिक है, इस वक्त चूँकि टाइम पूरा होने वाला है इसको नहीं टच करते। पूरे कुरान में बेशुमार बार बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह। बस यहाँ दुआ कर लें अल्लाह हमारे औलादों के दिलों में दीन की मोहब्बत डाल दें। यह ना कि हम दौरे कुरान कर रहे हैं और वो कोई दौरे शैतान कर रहे हों। अल्लाह उन पर अपना रहम कर दे। नेक अमाल की कबूलियत की दुआएं करनी है, सुबह शाम रब की तस्बीह करनी है, अल्लाह से नेक गुमान करना है और नस्लों के लिए शैतान से पनाह की दुआएं करनी है। आज इफ्तारी के वक्त दुआ कीजिएगा अपनी नस्लों के लिए, ख़ास तौर पर कि अल्लाह हमारी नस्लों में मुत्तकीन पैदा कर दे। और आगे रुकू नंबर 13 है, आयत 42 से 54, किताब व हिकमत का इल्म सीखना है इंशाल्लाह। हज़रत मरियम ही की स्टोरी है, पाकीज़ा बेटी को अल्लाह ताला किस बड़ी आजमाइश में डालता है, आइए ज़रा देखते हैं। और इससे पता चलता है कि जिनके दर्जे हैं सिवा उनकी मुश्किलें हैं बड़ी। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा की, और जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। ए मरियम तुम अपने रब की इताअत करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ए नबी ये गैब की खबरों में से है जिसे हम आपकी तरह वही से पहुँचाते हैं। आप तो उनके पास नहीं थे जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को इनमें से कौन पालेगा, और ना आप उनसे झगड़ों के वक्त पास थे। जब फरिश्तों ने कहा कि मरियम अल्लाह तुझे अपने कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है जो दुनिया और आखरत में जी इज्जत है और वो मेरे मुकर्रबीन में से है, अल्लाह आपकी औलादों में भी ये खूबियाँ डाल दे। वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा और उधेड़ उम्र में भी, ये हज़रत ईसा के दोबारा आने की तरफ इशारा, और वो नेक लोगों में से होगा। कहने लगी इलाही मुझे लड़का कैसे होगा हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा इसी तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, जब वो कभी किसी काम को करने का इरादा करता है तो क्या कहता है हो जा और वो हो जाता है, यानी कुन फयाकुन का मालिक है। अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, ये हज़रत ईसा के मौजज़े हैं। फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह के हुक्म से मैं मादरजाद अंधे को और कोड़ी को अच्छा कर लेता हूँ और मुर्दे को जगा देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो तुम अपने घरों में ज़खीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यानी आज इफ्तारी के लिए क्या कुछ जमा किया हुआ है वो बता देते थे। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बास वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई, और तुम्हारे पास रब की निशानी लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो और यही सीधी राह है। मगर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनका कुफर महसूस किया तो कहने लगे मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है। क़ाल अल हवारीशून, हवारियों ने जवाब दिया हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की तबाह की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों में से बेहतर है। अल्लाह अकबर, चुने हुए लोग थे अल्लाह ने, इनकी क्या खूबसूरत बातें हमारे सामने रखी। इस रुकू में जो बातें मेरे आपके अमल के नुक्ते हैं, नंबर एक अल्लाह के दीन के मददगार बनना है, दुआ कीजिए अल्लाह में अंसारुल्लाह बना ले। रुकू और सजदे करने हैं, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर ही बेहतरीन है, और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना है। नेक और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करनी है, शहादत हक का काम करना है और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना है। आगे रुकू नंबर 14, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ईमान और अमल सवाले के रब को महसूस कीजिएगा। आयत 55 से 63, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईसा, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ क़यामत के दिन तक, फिर तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, मैं तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तलाफात का फ़ैसला कर दूंगा, फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा और इनका कोई मददगार ना होगा, लेकिन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा पूरा देगा और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह में ईमान वालों में कर दे। ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयतें हैं, हिकमत वाली नसीहत हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल तो हू बहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में से ना होना। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे झगड़े, तो आप कह दीजिए कि आओ, हम तुम अपने अपने फर्जंदों को यानी बेटों को और हम तुम अपनी अपनी औरतों को और हम तुम खास अपनी अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजजी के साथ इल्तिजा करें। इसको आयत मुबाहला कहते हैं। और झूठों पर अल्लाह की लानत करें, यकीनन यही सच्चा बयान है, कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। फिर भी अगर कबूल ना करें तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। क्या पता चला, सहाबा कराम हक को पहचानने वाले थे, उस पर जमने वाले थे, अल्लाह के इल्म को कामिल समझते हुए हर हुज्जत और झगड़े से दूर रहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे मुकम्मल यकीन रखते थे और हर घड़ी तैयार, हर वक्त नबी सल्लम का साथ देने को तैयार थे। हमने अपने लिए अमल के नुक्ते क्या लेने हैं? रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, ईमान और अमल सालेह की हकीकत को जानना है, अपने नफ्स अखलाक और ज़िंदगी को दीन की जीती जागती तस्वीर बनाना है और शक में नहीं पड़ना। अल्लाह हमें इस पे जमने वाला बना दे। बस आखिरी रुकुओं में से एक रुकू, रुकू नंबर 15 आयत 64 से 71, दावत इलल्लाह। कुल, आप कह दीजिए कि अहले किताब, ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाएं, ना अल्लाह को छोड़कर आपस में एक दूसरे ही को रब बनाएं, बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इनके बाद नाजिल की गई, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो तो यक तरफा खालिस फोकस्ड मुसलमान थे, वो मुशरिक भी ना थे। सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नज़दीक तर तो वही लोग हैं जिन्होंने इनका कहा माना, यानी नबी सल्लम के उम्मती, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग ईमान लाए, मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। अहले किताब, तुम बावजूद कायल होने के फिर भी जानते बूझते अल्लाह की आयतों का कुफर कर रहे हो। अहले किताब, बावजूद जानने के हक और बातिल को आपस में क्यों खलत मलत कर रहे हो, क्यों हक को छुपा रहे हो? आप देखिए, सोल सर्चिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे, शऊर को बेदार किया जा रहा है। तो क्या पता चले इन आयात में कि दीन इस्लामी है, अल्लाह की रज़ा को पाने के काम क्या है, अल्लाह के लिए फोकस हो जाएं, अल्लाह मुझे आपको यकसू कर दे, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देनी है, उम्मत को मुनज़्ज़म तरीके से कुरान की तरफ लाना है और बग़ैर इल्म के बहस में नहीं पढ़ना। रुकू नंबर 16 आयत 72 से 80, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है, फरमाया और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन ना करो। ये उनकी साजिशें थी या उनके दिल का तासुब था जिसको बयान किया जा रहा है। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत अल्लाह ही की हिदायत है, और ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन ना करो कि कोई जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो। ये तुमसे तुम्हारे रब के बारे में झगड़ा करें। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे दे। अल्लाह ताला वुसअत वाला और जानने वाला है, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतें कर दे। बस अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें खजाने का अमीन बना दें तो भी वो तुझे वापस कर दें, और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि अगर तू इन्हें एक दीनार भी अमानत दे दे तो वो तुझे अदा ना करें। हाँ, ये और बात है कि तू इसके सर पे ही खड़ा रहे, ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, क्यों नहीं, मुआवजा ज़रूर होगा। अलबत्ता जो शख्स अपना इकरार पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। अल्लाह ताला ना तो इनसे कोई बातचीत करेगा और ना इनकी तरफ कयामत के दिन देखेगा और ना इनको पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यकीनन इनमें एक गिरोह ऐसा भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं, वो तो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह तला किताबो हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा तुम सब रब के हो जाओ। अल्लाह हम सबको रब्बानी बना दे। तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब, और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? ये सब बातिल अदियान के ऊपर एक किस्म की तनकीद है। हमारे लिए इस रुकू में से अल्लाह की रजा को पाने के रवैये क्या हैं? किताब और हिकमत की तालीम हासिल करनी है, इंसानों को दीन हक की दावत देनी है, अमानत और अहद की पासदारी करनी है, परहेजगारी इख्तियार करनी है, किताबुल्लाह का इल्म सीखते रहना है, और रब्बानी रवैये इख्तियार करने हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिरी रुकू है रुकू नंबर 17, 81-91, दावते हक क्या है? इस्लाम। यहाँ अम्बिया कराम से लिए हुए एक वादे का जिक्र है, इसको नोट कर लीजिए, कहीं जाकर सूरत अल अराफ में इसको आपके साथ शेयर करूँगी तो आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ने इंसानों से दो वादे लिए, एक अल्लाह के एक होने का और एक नबी सल्लम के रसूल होने का। यहाँ एक कायद का बस नोट करते जाइए, फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो बात समझ आएगी। ये वादा है नबी सल्लम को मानने का, और इसमें अम्बिया कराम को बुलाया। वैसा खज़ल्लाहु मीसाकन नबीजीन, जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया, क्या लिया, कि जो कुछ मैं तुम्हें किताबो हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और इसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो। सब ने कहा हमें इकरार है। फरमाया बस तुम अब गवाह रहो, खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, बस इसके बाद भी जो पलट जाए वो यकीनन पूरे नाफरमान हैं। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और सब जमीन वाले अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हों या ना खुशी से, सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। ऐ नबी, आप कह दीजिए हम अल्लाह पर और जो कुछ हम पर उतारा गया और जो कुछ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद पर उतारा गया, और जो मूसा ईसा और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से दिया गया, इन सब पर ईमान लाते हैं, यानी मोमिन खुले दिल का होता है। हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे, इसका दीन कबूल ना किया जाएगा और वह आखरत में नुकसान पाने वालों में होगा। यहाँ दिल की गहराई से दुआ करूँगी कि हमारी वो औलादें जो गैरों के असर में आकर इस्लाम छोड़ चुकी, अल्लाह उनको वापस इस्लाम पे ले आए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की सच्चाई की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाह ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। इनकी तो बस यही सज़ा है कि इन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिस पर ये हमेशा पड़े रहें। ना तो इनसे अजाब हल्का किया जाएगा, ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह करें, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफर करें, फिर कुफर में भड़ जाएं, तो इनकी तौबा हरगिज़ हरगिज़ कबूल ना की जाएगी। यही लोग गुमराह हैं। हाँ, जो लोग कुफर करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर ज़मीन भर कर सोना दे वो फ़िदये ही में हो, तो भी हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ़ देने वाला अज़ाब है और जिनका कोई मददगार नहीं। पारे की आखिरी आयत को जब आप कल अगले पारे की आयत के साथ सुनेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि दुनिया में अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। दिल खोल कर उसकी रज़ा में जो दे सकें दे दें, कल सोना भर के ज़मीन भी देंगे तो खुलासी ना होगी। इस आखिरी रुकू से हमें अमल की बातें क्या मिली? अहदे अलस को भी पूरा करना है और नबी सल्लम को भी नबी मानना है। तमाम उम्र अल्लाह की इनफरमा बरदारी करनी है, दीने हक की दावत देनी है, तौबा और इस्लाह करनी है, और रसूलों के हक में गवाही देनी है, और सबसे बढ़ के रसूलों के मिशन में मददगार बनना है, उनकी मदद करनी है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस रास्ते में खपा दे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही व असहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।